पैनियम नंबर 10 राष्ट्रों का उदय और पतन 1500-2000 की मुहरबंदी और दानियल यज्ञ 11:30-16 का छिपा हुआ भविष्य सूचक इतिहास।
11वें और 12वें पदों का विषय दक्षिण के राजा का उत्थान और पतन है। इसी प्रकार दूसरे पद में अंतिम राष्ट्रपति के रूप में दर्शाया गया अजगर शक्ति का अंतिम सांसारिक प्रतिनिधि संयुक्त राज्य अमेरिका का अंतिम उत्थान और पतन दिखाया गया है, और तीसरे तथा चौथे पदों में संयुक्त राष्ट्र का अंतिम उत्थान और पतन दर्शाया गया है। 5वें से 9वें पद 538-1888 तक पापीय शक्ति के इतिहास का प्रतिनिधित्व करते हैं। 538 पापीय शक्ति के सशक्तिकरण को चिह्नित करता है। 1898 पाप सत्ता के घातक घाव को चिह्नित करता है, और इसलिए 5वें से 9वें पद उस पशु के अंतिम उत्थान और पतन का प्रतिनिधित्व करते हैं। 10वां पद 1989 को, जैसा कि पूर्व सोवियत संघ में निरूपित है, दक्षिण के राजा के पतन के रूप में चिह्नित करता है।
जो भी राष्ट्र कर्म रंगभूमि पर आया है उसे पृथ्वी पर अपना स्थान ग्रहण करने की अनुमति दी गई है, ताकि ये देखा जा सके कि वो निघबान और पवित्र जन के उद्देश्य को पूरा करेगा या नहीं। भविष्यवाणी ने विश्व के महान साम्राज्यों बाबुल, मेद फारस, यूनान और रोम के उदय और पतन का वर्णन किया है। इनके साथ ही कम शक्ति वाले राष्ट्रों के साथ भी इतिहास ने स्वयं को दोहराया। प्रत्येक का एक परीक्षा काल रहा, प्रत्येक असफल हुआ, उसकी महिमा फीकी पड़ गई, उसकी शक्ति चली गई और उसका स्थान किसी अन्य ने ले लिया। जैसा कि पवित्र शास्त्र के पृष्ठों में राष्ट्रों के उत्थान और पतन से स्पष्ट होता है, उन्हें यह सीखना चाहिए कि मात्र बाहरी और सांसारिक शोभा कितनी निरर्थक है। बाबुल अपनी सारी शक्ति और वैभव के साथ, ऐसी शक्ति और वैभव जैसा हमारे संसार ने फिर कभी नहीं देखा, वही शक्ति और वैभव जो उस युग के लोगों को इतना स्थिर और स्थायी प्रतीत होता था, कितनी पूरी तरह हो लुप्त हो गया है। घास के फूल की भांति वो नाश हो गया है। इसी प्रकार वो सब नष्ट हो जाता है जिसका आधार परमेश्वर नहीं है। केवल वही टिक सकता है जो उसके उद्देश्य से बंधा हुआ है और उसके चरित्र को प्रकट करता है। उसके सिद्धांत ही हमारे संसार द्वारा जात एकमात्र अटल बातें हैं। एजुकेशन 77:1-82।
11वीं और 12वीं आयतें रूस द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए दक्षिण के राजा के अंतिम उदय और पतन की पहचान करती हैं। 13वीं से 15वीं आयतें संयुक्त राज्य के अंतिम उदय और पतन की पहचान करती हैं। 11वें अध्याय की संपूर्ण भविष्य सू की कथा राज्यों के उदय और पतन की संरचना पर आधारित है। भविष्यवाणी का विद्यार्थी, यदि 11वें अध्याय के भविष्य सू की संदेश का उचित रीति से विभाजन करने की कोई संभावना रखना चाहता है तो उसे इस तथ्य पर विचार करना होगा। दानियल अध्याय 11 का मूलभूत दृष्टिकोण यह है कि उसमें राज्यों के उठने और गिरने के बार बार के चित्रण प्रस्तुत किए गए हैं। जब बहन व्हाइट ने कहा, इस प्रकार मादी फारस का राज्य और यूनान तथा रोम के राज्य नष्ट हो गए, तो वो यूनान को अजगर, रोम को पशु और मादी फारस को झूठा नबी ठहरा रही हैं। वो उस अंतिम पृथ्वीगत राज्य के अंतिम उत्थान और पतन की पहचान कर रही हैं जो अजगर, पशु और झूठे नबी से मिलकर बनता है, जो अपने उत्थान की शुरुआत रविवार के कानून पर करते हैं और प्रकाशित वाक्य 16:12-21 की पूर्ति में संसार को हरमगदोन तक ले जाते हैं। वो परमेश्वर के लोगों को पवित्र शास्त्र के पृष्ठों में स्पष्ट किए गए राष्ट्रों के उत्थान और पतन को उस दृष्टिकोण के रूप में अपनाने के लिए निर्देशित कर रही हैं, ताकि वे ये सीखें कि केवल बाहरी और सांसारिक महिमा कितनी नितांत निरर्थक है। हमें सिर्फ बाहरी और सांसारिक महिमा कितनी निरर्थक है ये सीखने की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम ये और समझ सकें कि जिसका आधार परमेश्वर नहीं है सब कुछ नाश हो जाता है। अतः अपने जीवन का आधार परमेश्वर होना या ना होना जीवन मरण का प्रश्न है। विचार के इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सिस्टर व्हाइट ये परिभाषित करती हैं कि परमेश्वर को अपना आधार बनाने का अर्थ क्या है, जब वे कहती हैं, केवल वही टिक सकता है जो उसके उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, नहे तो और उसके चरित्र को व्यक्त करता है। उन्होंने अभी अभी ये समझाया है कि जो कुछ भी परमेश्वर की नींव पर नहीं है वो नाश हो जाता है, और ये कि जो कुछ भी इस नींव पर बना है उसकी दोहरी कसौटी ये है कि कोई वस्तु उसके उद्देश्यों से बंधी हुई है या नहीं, और क्या वो उसके चरित्र को व्यक्त करती है। उसका चरित्र ही उसका आधार है।
फिर अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में वो कहती है कि उनके सिद्धांत ही एकमात्र अटल बातें हैं जिन्हें हमारा संसार जानता है। परमेश्वर के सिद्धांत ही उनका चरित्र है, और उनके सिद्धांत उनके चरित्र को व्यक्त करते हैं। यह जीवन मरण का प्रश्न है कि मनुष्य जाति उस परमेश्वर से, जो सब कुछ का आधार है, कैसे संबंध रखती है। मेरा मानना है कि दानियल के 11वां अध्याय की आधारभूत संरचना राज्यों के उत्थान और पतन की कथा पर आधारित है। एक ऐसा अंश है जहां प्रेरणा हमें अध्ययन की सही विधि के बारे में सूचित करती है।
इतिहास का एक अध्ययन ऐसा है जिसे निंदा नहीं की जानी चाहिए। पवित्र इतिहास नबियों के विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषयों में से एक था। राष्ट्रों के साथ उसके व्यवहारों के अभिलेखों में यहोवा के पदचिह्न अंकित थे। अतः आज हमें पृथ्वी के राष्ट्रों के साथ परमेश्वर के व्यवहारों पर विचार करना है। हमें इतिहास में भविष्यवाणी की पूर्ति को देखना है। महान सुधार आंदोलनों में ईश्वरीय प्रबंध की कार्यविधि का अध्ययन करना है, और महान विवाद के अंतिम संघर्ष के लिए राष्ट्रों को पंक्तिबद्ध किए जाने की प्रक्रिया में घटनाओं की प्रगति को समझना है। चिकित्सा की सेवा 1848।
इतिहास के पवित्र अध्ययन का आशय है पृथ्वी के राष्ट्रों के साथ परमेश्वर के व्यवहार का अध्ययन करना, और उसके सुधारात्मक आंदोलनों में उसकी ईश्वरीय प्रबंध की अगुवाई का अध्ययन करना। इसलिए पवित्र इतिहास में अध्ययन की एक बाह्य और एक आंतरिक रेखा सम्मिलित होती है। परमेश्वर के भविष्य सूचक अचन की पुष्टि में इतिहास का उपयोग करने का उद्देश्य ये है कि उस भविष्य सूचक इतिहास के द्वारा महान विवाद के अंतिम संघर्ष के लिए राष्ट्रों की लामबंदी में घटनाक्रम की प्रगति को समझा जा सके। बहन व्हाइट का उपर्युक्त अनुच्छेद पवित्र इतिहास का एक भविष्य सूचक प्रतिरूप निर्मित करने की आवश्यकता पर एक अत्यंत प्रबुद्ध व्याख्या से लिया गया था, जो राज्यों के उदय और पतन में प्रदर्शित मौलिक संरचना पर आधारित है।
मसीही कार्य की तैयारी के रूप में बहुत से लोग यह आवश्यक समझते हैं कि ऐतिहासिक और धर्मशास्त्रीय लेखनों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया जाए। वे मानते हैं कि ये ज्ञान सुसमाचार सिखाने में उनके लिए सहायक होगा, परंतु मनुष्यों के विचारों का उनका परिश्रमी अध्ययन उनकी सेवकाई को सुदृढ़ करने की अपेक्षा उसे निर्बल करने की प्रवृत्ति रखता है। जब मैं पुस्तकालयों को ऐतिहासिक और धर्मशास्त्रीय विद्या के भारी भरकम ग्रंथों से भरा देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ, जो रोटी नहीं है उस पर धन क्यों खर्च किया जाए। यूहन्ना का 6वां अध्याय हमें ऐसी रचनाओं की अपेक्षा कहीं अधिक बताता है। मसीह कहते हैं, मैं जीवन की रोटी हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा न रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी न प्यासेगा। मैं वो जीवित रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरी। यदि कोई इस रोटी को खाए तो वो सदा जीवित रहेगा। जो मुझ पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन है। जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ वे आत्मा हैं और वे जीवन हैं। यूहन्ना 6:33-51-67। ऐसा इतिहास का अध्ययन भी है जिसकी निंदा नहीं की जानी चाहिए। पवित्र इतिहास भविष्यद्वक्ताओं के विद्यालयों में अध्ययन के विषयों में से एक था। राष्ट्रों के साथ उसके व्यवहार के अभिलेख में यहोवा के पदचिन्ह अंकित थे। इसलिए आज हमें पृथ्वी के राष्ट्रों के साथ परमेश्वर के व्यवहार पर विचार करना है। हमें इतिहास में भविष्यवाणियों की पूर्ति को देखना है। महान सुधारवादी आंदोलनों में दैवी प्रबंध के कार्यों का अध्ययन करना है, और महान विवाद के अंतिम संघर्ष के लिए राष्ट्रों की सेनाबंदी में घटनाओं की प्रगति को समझना है। ऐसा अध्ययन जीवन के व्यापक सर्वांगीण दृष्टिकोण देगा। ये हमें उसके संबंधों और निर्भरताओं के बारे में कुछ समझने में मदद करेगा कि समाज और राष्ट्रों के महान भ्रातृत्व में हम कितने अद्भुत ढंग से एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और किस हद तक किसी एक सदस्य का उत्पीड़न और अधोगति सबके लिए हानि का कारण बनता है। परंतु इतिहास, जैसा कि सामान्यतः पढ़ा जाता है, मनुष्य की उपलब्धियों, युद्धों में उसकी विजयों, सत्ता और महानता प्राप्त करने में उसकी सफलता से संबंधित होता है। मनुष्यों के मामलों में ईश्वर की भूमिका दृष्टि से ओझल हो जाती है। बहुत कम लोग राष्ट्रों के उत्थान और पतन में उसके उद्देश्य के क्रियान्वयन का अध्ययन करते हैं, और बहुत हद तक जो धर्मशास्त्र पढ़ा और पढ़ाया जाता है वो मानवीय अटकलों का मात्र अभिलेख है, जो केवल ज्ञान के बिना बातों से युक्ति को अंधकारमय करना ही करता है। अक्सर इन अनेक पुस्तकों को इकट्ठा करने का उद्देश्य मन और आत्मा के लिए आहार पाने की इच्छा इतना नहीं होता जितना कि दार्शनिकों और धर्मशास्त्रियों से परिचित होने की महत्वाकांक्षा और लोगों के सामने ईसाई धर्म को विद्वतापूर्ण शब्दों और प्रस्तावों में प्रस्तुत करने की इच्छा। लिखी गई सभी पुस्तकें पवित्र जीवन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकती। मुझसे सीखो, महान शिक्षक ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर लो, मेरी नम्रता और दीनता सीखो। जीवन की रोटी के अभाव में नाश हो रही आत्माओं से संवाद करने में तुम्हारा बौद्धिक अहंकार तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। इन पुस्तकों के अध्ययन में तुम उन्हें उन व्यावहारिक पाठों का स्थान लेने दे रहे हो जो तुम्हें मसीह से सीखने चाहिए। इस अध्ययन के परिणामों से लोग तृप्त नहीं होते। मन को इतना थका देने वाले इस शोध में बहुत कम ही ऐसा मिलता है जो किसी को आत्माओं के लिए सफल कार्यकर्ता बनने में मदद करे। उद्धारकर्ता आए गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए, लूका 4:18। अपनी शिक्षा में उन्होंने सबसे सरल शब्दों और सबसे सादे प्रतीकों का प्रयोग किया, और ये कहा गया है कि साधारण लोगों ने उन्हें सहर्ष सुना। मरकुस 12:33, जो लोग इस समय उनका कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें उनकी दी हुई शिक्षाओं की और भी गहरी समझ की आवश्यकता है। जीवित परमेश्वर के वचन हर प्रकार की शिक्षा से बढ़कर है। जो लोगों की सेवा करते हैं उन्हें जीवन की रोटी से पोषण लेना चाहिए। इससे उन्हें आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी, तब वे सभी वर्गों के लोगों की सेवा करने के लिए तैयार होंगे। आरोग्य की सेवा 4:4
सिस्टर व्हाइट आगे परिभाषित करती है कि ऐतिहासिक अध्ययन का सच्चा दर्शन ये पहचानना है कि राजा के निर्णयों के आधार पर राजाओं की स्थापना और उनकी पदच्युति परमेश्वर की शक्ति का प्रकटीकरण है।
राष्ट्रों के इतिहास में परमेश्वर के वचन का विद्यार्थी दिव्य भविष्यवाणी की अक्षरशः पूर्ति देख सकता है। बाबुल अंततः चूर चूर होकर टूट पड़ा और समाप्त हो गया, क्योंकि समृद्धि के दिनों में उसके शासकों ने अपने को परमेश्वर से स्वतंत्र समझा और अपने राज्य की महिमा का श्रेय मानवीय उपलब्धि को दिया। मादी फारसी साम्राज्य पर भी स्वर का क्रोध टूट पड़ा, क्योंकि उसमें परमेश्वर की व्यवस्था को पैरों तले रौंद दिया गया था। प्रभु का भय अधिकांश लोगों के हृदयों में कहीं स्थान नहीं पा सका। दुष्टता, ईश निंदा और भ्रष्टाचार का प्रभुत्व था। उसके बाद जो राज्य आए वे और भी निकृष्ट और भ्रष्ट थे, और वे नैतिक स्तर पर और भी नीचे और नीचे धसते चले गए। पृथ्वी के प्रत्येक शासक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति स्वर्ग प्रदत्त है, और इस प्रकार प्रदत्त शक्ति का वो जैसा उपयोग करता है उसी पर उसकी सफलता निर्भर करती है। प्रत्येक के लिए दिव्य प्रहरी का वचन है, मैंने तेरी कमर बांध दी यद्यपि तूने मुझे नहीं जाना, यशाया 45:5। और प्रत्येक के लिए वे वचन जो प्राचीन काल में नबुकदनेस्सर से कहे गए थे जीवन का पाठ हैं, अपने पापों को धार्मिकता के द्वारा तोड़ दे और अपनी अधर्मताओं को गरीबों पर दया दिखाकर, शायद इससे तेरी शांति का समय लंबा हो जाए, दानियेल 4:27। इन बातों को समझना, ये समझना कि धर्म राष्ट्र का उत्थान करता है, कि सिंहासन धर्म से स्थापित होता है और करुणा से संभाला जाता है, जो राजाओं को हटाता है और राजाओं को स्थापित करता है, उसकी शक्ति के प्रकटीकरण में इन सिद्धांतों की क्रियाशीलता को पहचानना, यही इतिहास के दर्शन को समझना है। नीति वचन 14:12-20:28, दानियेल 2:21। केवल परमेश्वर के वचन में ही ये बात स्पष्ट रूप से प्रतिपादित की गई है। यहाँ ये दिखाया गया है कि राष्ट्रों की शक्ति व्यक्तियों की तरह उन अवसरों या सुविधाओं में नहीं पाई जाती जो उन्हें अजेय प्रतीत कराते हैं। वो उस महानता में नहीं मिलती जिस पर वे घमंड करते हैं। उसकी माप उस निष्ठा से होती है जिसके साथ वे परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करते हैं। भविष्यद्वक्ता और राजा 405:410।
11वें और 12वें पदों का विषय दक्षिण के राजा का उत्थान और पतन है, परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि ये पद 144,000 की मूकबंदी को और उन 3 परीक्षाओं में से दूसरी परीक्षा को चिह्नित करते हैं, जिनका आरंभ 1997 में समाप्ति के समय हुआ था, जैसा कि 10वें पद में दर्शाया गया है। उस मुहर बंदी का प्रतिनिधित्व सिंहों की मांद में दानियेल, आग की भट्टी में 3 धर्मी जन, अध्याय 2 में पशुओं की प्रतिमा के विषय में नबूकदनेस्सर के स्वप्न को समझने के लिए प्रार्थना करते दानियेल और वे तीन धर्मी। अध्याय 9 में लेव व्यवस्था 26 की प्रार्थना करता दानियेल, ज्ञान की वृद्धि को समझने वाले बुद्धिमान। जकरिया अध्याय 3 में यहोशू का पाप हटाया जाना। अध्याय 4 में जरुब्बाबेल मिस्र में दूसरा शासक बनता यूसुफ। पिंतकुत से पहले 10 दिनों तक ऊपरी कोठरी में शिष्य। एक्सेटर शिविर सभा में मिलरवादी। विजयी प्रवेश में जुलूस का नेतृत्व करता लाजर। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 के 144,000, इन सब के द्वारा किया गया है। पद 11 2014 में यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में आया और जुलाई 2023 में वो दृश्य परीक्षण जिसमें परमेश्वर की प्रजा श्वेत बनाई जाती है शुरू हुआ। अध्याय 11 की 5वीं पंक्ति पद 13 से 15 तक है।
5वीं पंक्ति का अवलोकन।
क्योंकि उत्तर का राजा फिर लौटेगा और पहले से भी अधिक बड़ी सेना तैयार करेगा, और कुछ वर्षों के बाद वो महान सेना और बहुत धन संपदा के साथ निश्चय ही आएगा, और उन्हीं दिनों में बहुत से लोग दक्षिण के राजा के विरुद्ध उठ खड़े होंगे, और तेरे लोगों में से लुटेरे भी दर्शन को स्थापित करने के लिए अपने आप को बढ़ाएंगे, परंतु वे गिरेंगे। तब उत्तर का राजा आकर घेराबंदी का टीला खड़ा करेगा और सबसे किलेबंद नगरों को ले लेगा, और दक्षिण का बल उसका सामना न कर सकेगा, न उसके चुने हुए लोग, और सामना करने की कोई शक्ति न रहेगी। दानियेल 11:13-15।
ये पद 2000 ईसा पूर्व में पूरे हुए थे और ये पानियम गद की युद्ध की पहचान कराते हैं, जिसमें परस्पर विरोधी राजाओं और उनकी संधियों का वर्णन है। और यही पद इतिहास के उस बिंदु को भी चिन्हित करते हैं जहां मूर्ति पूजक रोम ने पहली बार दानियेल अध्याय 11 के इतिहास में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इन पदों में बाइबल की भविष्यवाणी के छठे राज्य के अंतिम उदर और पतन का वर्णन है, तथा मसीह के कैसारिया फिलिप्पी के भ्रमण का बाइबलीय इतिहास भी, जहां पतरस 144,000 की मोहरबंदी को चिन्हित करता है। ये इतिहास अध्याय 12 की 3 परीक्षाओं में से तीसरी के आगमन के साथ 144,000 की मोहरबंदी का प्रतिरूप प्रस्तुत करता है, जो शुद्ध किया जाना, शुभ्र बनाया जाना और परखा जाना से बनी है। ये 3 पद 16वें पद तक ले जाते हैं, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार के कानून का प्रतिनिधित्व किया गया है। जब 17 अगस्त 1824 को एक्सेटर कैंप मीटिंग समाप्त हुई, तो बुद्धिमान कुंवारियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के पूरे पूर्वी समुद्री तट पर 66 दिनों में आधी रात की पुकार का संदेश पहुंचा दिया। एक ऐसा समय आता है जब सभी कुंवारियां जागती हैं और एक वर्ग के पास तेल नहीं होता और उसकी पहचान कराने वाली हर चीज मौजूद होती है। जब शिमोन बरयोना का नाम बदलकर पतरस रखा गया, तब 144,000 की मुहरबंदी चिन्हित होती है। उस बिंदु से आगे यीशु ने चेलों को क्रूस से संबंधित घटनाओं के बारे में सिखाना शुरू किया।
क्रूस परीक्षण काल के समापन का प्रतीक है, और विलियम मिलर, जिनका प्रतिरूप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था और बदले में यूहन्ना का प्रतिरूप एलिया था, को परीक्षण काल के समापन से संबंधित घटनाएं प्रस्तुत करने के लिए उठाया गया, जैसा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और एलिया दोनों ने किया था। यूहन्ना ने इसे इस प्रकार कहा,
परंतु जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को अपने बपतिस्मा के लिए आते देखा, तो उनसे कहा, हे सांपों की संतान, आने वाले क्रोध से भागने के लिए तुम्हें किसने चेताया? मत्ती 3:7।
एलिया ने इसे इस तरह कहा,
और अहाब ने एक उपवन बनाया, और वो उससे पहले के इज़राइल के सब राजाओं से बढ़कर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोधित करने वाले काम करता रहा। उसके दिनों में बेतेल का निवासी हीएल ने यरीहो का निर्माण किया। उसने उसकी नींव अपने पहलौठे अबीराम पर रखी और उसके फाटक अपने सबसे छोटे पुत्र सेगूब पर खड़े किए, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहा था। और गिलात के निवासियों में से तिशबी एलिया ने अहाब से कहा, जैसे इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जीवित है जिसके सम्मुख मैं खड़ा रहता हूँ, इन वर्षों में मेरे वचन के अनुसार को छोड़कर न ओस पड़ेगी और न वर्षा होगी। 1 राजा 16:33-70 वर्के।
आधुनिक सुधारक के रूप में विलियम मिलर के कार्य के बारे में बोलते हुए बहम व्हाइट ने कहा,
ये आवश्यक था कि लोगों को अपने खतरे के प्रति जागृत किया जाए, कि उन्हें परिवीक्षा की समाप्ति से संबंधित गंभीर घटनाओं के लिए तैयारी करने को प्रेरित किया जाए। महान विवाद, तीन चक।
दानियेल अध्याय 11 की अंतिम 6 आयतें कृपा काल के समापन से संबंधित घटनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन घटनाओं की मुहर 1989 में अंत के समय खोल दी गई और वे स्पष्ट रूप से प्रकट हुई।
क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले उद्धारकर्ता ने अपने शिष्यों को समझाया कि उन्हें मार डाला जाएगा और वे कब्र से फिर जी उठेंगे, और स्वर्गदूत उपस्थित थे ताकि उनके वचनों को मन और हृदय पर अंकित कर दें। परंतु शिष्य रोमी जुए से सांसारिक मुक्ति की आशा कर रहे थे, और वे ये विचार सहन नहीं कर सकते थे कि जिनमें उनकी सारी आशाएं केंद्रित थीं, वे अपमानजनक मृत्यु सहें। जिन वचनों को उन्हें स्मरण रखना था, वे उनके मन से ओझल हो गए, और जब परीक्षा का समय आया तो वो उन्हें अप्रस्तुत ही मिला। यीशु की मृत्यु ने उनकी आशाओं को उसी तरह पूरी तरह नष्ट कर दिया मानो उन्होंने उन्हें पहले से चेताया ही न हो। इसी प्रकार भविष्यद्वाणियों में भविष्य हमारे सामने उतना ही स्पष्ट खोल दिया गया है जितना मसीह के वचनों द्वारा शिष्यों के सामने खोला गया था। अनुग्रह काल की समाप्ति से संबंधित घटनाएं और कष्टकाल के लिए तैयारी का कार्य स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किए गए हैं, परंतु असंख्य लोगों को इन महत्वपूर्ण सत्यों की उतनी ही समझ है मानो वे कभी प्रकट ही न किए गए हों। शैतान चौकसी करता है कि हर वो छाप छीन ले जो उन्हें उद्धार के लिए बुद्धिमान बना सके, और कष्ट का समय उन्हें अप्रस्तुत पाएगा। महान संघर्ष 95।
ये कैसरिया फिलिपी में था, जिसे पानियम कहा जाता है, जहां पद 13-15 में मसीह ने अपने शिष्यों को क्रूस के विषय में सिखाना आरंभ किया, और इस प्रकार 22 अक्टूबर 1884 तक एक्सेटर कैंप मीटिंग के इतिहास का प्रतिरूप प्रस्तुत किया। 144,000 के सुधारवादी आंदोलन के आरंभ में अनुग्रह काल के समाप्त होने से संबंधित घटनाएं उन्मोचित की गईं, और 144,000 के उस आंदोलन के अंत में अनुग्रह काल के समाप्त होने से संबंधित घटनाएं पद 40 के गुप्त इतिहास के भीतर उन्मोचित होती हैं।
आज एलियास और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की आत्मा और सामर्थ्य में परमेश्वर द्वारा नियुक्त दूत न्याय के लिए नियत संसार का ध्यान उन गंभीर घटनाओं की ओर आकर्षित कर रहे हैं जिनका संबंध परीक्षा अवधि की अंतिम घड़ियों तथा मसीह यीशु के राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में प्रकटन से है, और जो शीघ्र ही घटित होने वाली हैं। भविष्यद्वक्ताओं और राजाओं 715-770।
अनुग्रह काल के समापन से संबंधित घटनाएं वही घटनाएं हैं जो आयत 40 के गुप्त इतिहास में उद्घाटित होती है। जकरया अध्याय 3 में अन्वेषणात्मक न्याय के अंतिम दृश्य चित्रित किए गए हैं। दैवीय प्रेरणा जकरया की गवाही को यहेजकेल अध्याय 9 में मुहरबंद किए गए लोगों के साथ जोड़ती है।
परमेश्वर की प्रजा देश में किए जा रहे घृणित कर्मों के कारण आहे भर रही है और रो रही है। वे आंसू बहाते हुए दुष्टों को चेतावनी देते हैं कि वे परमेश्वर की व्यवस्था को पैरों तले रौंदने के कारण किस विपत्ति में पड़ रहे हैं, और अकथनीय शोक के साथ वे अपने ही अपराधों के कारण प्रभु के सामने दीन होकर झुकते हैं। दुष्ट उनके शोक का उपहास करते हैं, उनकी गंभीर विनतियों का मजाक उड़ाते हैं, और जिसे वे उनकी कमजोरी कहते हैं उसका तिरस्कार करते हैं। परंतु परमेश्वर की प्रजा की ये पीड़ा और दीनता इस बात का अचूक प्रमाण है कि वे उस सामर्थ्य और चरित्र की उदात्तता को पुनः प्राप्त कर रहे हैं जो पाप के परिणाम स्वरूप खो गई थी, क्योंकि वे मसीह के और निकट आ रहे हैं और उनकी दृष्टि उनकी पूर्ण पवित्रता पर टिकी है। इसलिए वे पाप की अत्यंत घृणितता को इतनी स्पष्टता से पहचानते हैं। उनका पश्चाताप और आत्मदीनता परमेश्वर की दृष्टि में उन आत्मसंतुष्ट घमंडी लोगों की आत्मा से अनंत गुना अधिक स्वीकार्य, जो विलाप का कोई कारण नहीं देखते, जो मसीही की नम्रता का तिरस्कार करते हैं और जो परमेश्वर की पवित्र व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए भी सिद्धता का दावा करते हैं। नम्रता और दीनता ही शक्ति और विजय का आधार है। जो क्रूस के चरणों में झुकते हैं उनके लिए महिमा का मुकुट प्रतीक्षा कर रहा है। धन्य हैं ये शोक करने वाले, क्योंकि उन्हें सांत्वना दी जाएगी।
विश्वासी, प्रार्थनाशील जन मानो परमेश्वर ने उन्हें अपने में बंद कर लिया हो। वे स्वयं नहीं जानते कि वे कितनी दृढ़ता से सुरक्षित हैं।
शैतान के उकसाने पर इस संसार के शासक उन्हें नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। पर यदि उनकी आंखें खुल जातीं, जैसे दोथान में एलीशा के सेवक की आंखें खुली थीं, तो वे देखते कि परमेश्वर के स्वर्गदूत उनके चारों ओर डेरा डाले हुए हैं और अपनी ज्योति और महिमा से अंधकार की सेनाओं को रोक रखे हैं। जब परमेश्वर के लोग उसके सम्मुख अपने प्राणों को दीन करते हुए हृदय की पवित्रता के लिए विनती करते हैं, तो आज्ञा दी जाती है, उनसे मैले वस्त्र दूर करो, और ये उत्साहवर्धक वचन कहे जाते हैं, देख, मैंने तेरा अधर्म तुझसे दूर किया है और मैं तुझे नए वस्त्र पहनाऊंगा। मसीह की धार्मिकता का निष्कलंक वस्त्र परमेश्वर के परीक्षित, प्रलोभित, फिर भी विश्वास योग्य संतान पर डाल दिया जाता है। तिरस्कृत बचे हुए लोग महिमामय परिधान पहनाए जाते हैं और वे फिर कभी संसार की भ्रष्टताओं से मलिन नहीं होंगे। उनके नाम मेमनी की जीवन पुस्तक में बने रहते हैं, सब युगों के विश्वास योग्यों में दर्ज हैं। उन्होंने धोखेबाज की चालों का विरोध किया है, अजगर के गर्जन से उनकी निष्ठा नहीं डिगी, अब वे प्रलोभक की युक्तियों से सदा के लिए सुरक्षित हैं। उनके पाप पाप के उद्गम कर्ता पर स्थानांतरित कर दिए गए हैं, और बचे हुए लोग न केवल क्षमा और स्वीकार किए जाते परंतु सम्मानित भी होते हैं। एक स्वच्छ पगड़ी उनके सिरों पर रखी जाती है, वे परमेश्वर के लिए राजा और याजक ठहराए जाते हैं। जब शैतान अपने आरोपों को उभारते हुए और इस दल को नाश करने का प्रयत्न कर रहा था, तब पवित्र स्वर्गदूत अदृश्य रूप से इधर उधर आते जाते हुए उन पर जीवते परमेश्वर की मुहर लगा रहे थे। ये वे हैं जो मेमने के साथ सियोन पर्वत पर खड़े हैं, जिनके ललाटों पर पिता का नाम लिखा है। वे सिंहासन के सामने नया गीत गाते हैं, वो गीत जिसे पृथ्वी से छुड़ाए गए 144,000 को छोड़ कोई मनुष्य सीख नहीं सकता। ये वे हैं जो मेमने के जहां कहीं जाने पर भी उसके पीछे पीछे चलते हैं। ये मनुष्यों में से छुड़ाए गए परमेश्वर और मेमने के लिए पहलौठे फल ठहरे, और उनके मुंह में कोई छल नहीं पाया गया, क्योंकि वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने निर्दोष हैं। अब स्वर्गदूत के उन वचनों की पूर्ण पूर्ति हो चुकी है। अब सुन हे महायाजक यहोशु, तू और तेरे सामने बैठे तेरे साथी, क्योंकि वे आश्चर्य के पात्र पुरुष हैं, क्योंकि देख, मैं अपने दास अंकुर को लाने वाला हूँ। मसीह अपने लोगों के उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में प्रकट किया गया है। अब सचमुच अवशेष आश्चर्य के पात्र पुरुष हैं, क्योंकि उनकी तीर्थयात्रा के आंसू और दीनता परमेश्वर और मेमने की उपस्थिति में आनंद और आदर को स्थान दे देते हैं। उस दिन यहोवा की डाली सुंदर और महिमामयी होगी, और पृथ्वी का फल इज़राइल के बच निकले हुओं के लिए उत्तम और मनोहर होगा। और ऐसा होगा कि सियोन में जो बचा हुआ है और यरूशलेम में जो ठहरा रहता है, वो पवित्र कहलाएगा, ताकि हर एक जो यरूशलेम में जीवितों में लिखा हुआ है। टेस्टिमोनीज खंड 5 477-476।
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 144,000 वही यहेजकेल का समूह है, जिन्हें मुहर बंद किया जाता है, जब वे देश में जो घृणित बातें हैं उनके कारण आहे भरते और रोते हैं। उन्हें तब मुहर बंद किया जाता है जब उन्हें मसीह की धार्मिकता का वस्त्र और वो सुंदर पगड़ी दी जाती है, जो पतरस के राजा और याजक का प्रतीक है, जो पहले परमेश्वर की प्रजा नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा बन गए हैं।
पर तुम एक चुनी हुई पीढ़ी, राजसी याजकता, पवित्र जाति, विशेष प्रजा हो, ताकि तुम उसके गुण प्रकट करो, जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, जो पहले प्रजा न थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, जिन पर पहले दया न हुई थी पर अब दया हुई है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जैसे परदेशी और यात्री वैसे ही शरीर की अभिलाषाओं से जो आत्मा के विरुद्ध लड़ती हैं बचे रहो। अन्य जातियों के बीच तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिस बात में वे तुम्हें दुष्कर्मी कहकर बुरा कहते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को, जिन्हें वे देखते हैं, देखकर निरीक्षण के दिन परमेश्वर की महिमा करें। 1 पतरस 2:9-20।
इसलिए अब यदि तुम सचमुच मेरी बात मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो तुम सब लोगों में से मेरे लिए विशेष संपत्ति ठहरोगे, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी है, और तुम मेरे लिए याजकों का राज्य और पवित्र राष्ट्र ठहरोगे,
ये वे वचन हैं जो तू इसराइलियों से कहेगा। निर्गमन 19:7-5-6।
इस पृथ्वी के इतिहास के अंतिम दिनों में परमेश्वर की अपनी आज्ञाएं मानने वाली प्रजा के साथ की वाचा का नवीकरण होगा। उस दिन मैं उनके लिए मैदान के पशुओं, आकाश के पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जीवों के साथ एक वाचा करूंगा, और मैं पृथ्वी से धनुष, तलवार और युद्ध को समाप्त कर दूंगा और उन्हें निश्चिंत होकर चैन से लेटने दूंगा, और मैं तुझे सदा के लिए अपने से ब्याह दूंगा। हाँ, मैं तुझे धर्म और न्याय और प्रेम, करुणा और दया के साथ अपने से ब्याह दूंगा। मैं तुझे विश्वास योग्यता में भी अपने से ब्याह दूंगा, और तू प्रभु को जान लेगी। और उस दिन यह होगा कि मैं सुनूंगा, प्रभु कहता है, मैं स्वर्गों को सुनूंगा और वे पृथ्वी को सुनेंगे, और पृथ्वी अन्न, दाखरस और तेल को सुनेंगी, और वे इज़राइल को सुनेंगे, और मैं उसे अपने लिए पृथ्वी में बोऊंगा, और मैं उस पर दया करूंगा जिसने दया नहीं पाई थी, और मैं उनसे कहूंगा जो मेरे लोग न थे, तुम मेरे लोग हो, और वे कहेंगे तू मेरा परमेश्वर है। होशे 2:23। उस दिन इज़राइल का शेष और याकूब के घराने में से जो बच निकले हैं सत्य में इज़राइल के परम पवित्र प्रभु पर भरोसा करेंगे। यशाया 10:20। हर एक जाति, कुल, भाषा और लोगों में से ऐसे लोग होंगे जो इस संदेश का सहर्ष उत्तर देंगे, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय की घड़ी आ पहुंची है। वे हर उस मूर्ति से मुड़ जाएंगे जो उन्हें इस पृथ्वी से बांधे रखती है, और उसकी आराधना करेंगे जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और जल के सोते बनाए। वे हर बंधन से अपने आप को मुक्त करेंगे और संसार के सामने अपने आगाह की दया के स्मारकों के रूप में खड़े होंगे। प्रत्येक ईश्वरीय अपेक्षा के प्रति आज्ञाकारी होकर वे स्वर्गदूतों और मनुष्यों द्वारा ऐसे जनों के रूप में पहचाने जाएंगे जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और यीशु के विश्वास को धारण करते हैं। प्रकाशित वाक्य 14:6-4। देखो, वे दिन आते हैं, यहोवा कहता है, कि हल चलाने वाला लवनी करने वाले को पकड़ लेगा, और अंगूर रौंदने वाला बीज बोने वाले को, और पहाड़ों से मीठी दाखमधु टपकेगी और सब पहाड़ियां पिघल जाएंगी, और मैं अपने इज़राइल के लोगों की बंदी दशा को फिर पलट दूंगा, और वे उजड़े हुए नगरों को फिर बनाएंगे और उनमें बसेंगे, और वे दाख की बारियां लगाएंगे और उनका दाखमधु पियेंगे, वे बाग भी बनाएंगे और उनका फल खाएंगे, और मैं उन्हें उनकी भूमि में रोप दूंगा, और जिस भूमि को मैंने उन्हें दी है उससे वे फिर कभी उखाड़े न जाएंगे, यहोवा तेरा परमेश्वर कहता है। Amos 9:13-NIT Ether, रिव्यू एंड हियरल्ड, 26 फरवरी 1914।
ये स्पष्ट है कि 144,000 की अंतिम चुनी हुई पीढ़ी पर मोहर लग जाने के बाद भी ऐसे अन्य जाति हैं जो अन्य जातियों के आगमन के दिन 144,000 की जीवन शय ली आचरण से प्रभावित हो सकते हैं।
मानवीय शक्ति और मानवीय पराक्रम ने परमेश्वर की कलीसिया की स्थापना नहीं की, और वे उसे नष्ट भी नहीं कर सकते। कलीसिया मनुष्य की शक्ति की चट्टान पर नहीं, परंतु युगों की चट्टान मसीह यीशु पर स्थापित की गई थी, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। Matthew 16:18। परमेश्वर की उपस्थिति उसके कार्य को स्थिरता देती है। प्रधानों पर भरोसा न रखो, न मनुष्य के पुत्र पर, ये वचन हम तक आता है। Bhajan 240:3। शांति और विश्वास में तुम्हारी शक्ति होगी। Yeshaya 3:15। धर्म के शाश्वत सिद्धांतों पर स्थापित परमेश्वर का महिमामय कार्य कभी निष्फल नहीं होगा। वो शक्ति से शक्ति की ओर बढ़ता रहेगा, न शक्ति से, न पराक्रम से, परंतु मेरे आत्मा से, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। Zechariah 4:6। यह प्रतिज्ञा इस भवन की नेव जरूबाबेल के हाथों डाली गई है, उसके ही हाथ इसे पूरा भी करेंगे। शाब्दिक रूप से पूरी हुई। Pad 9। यहूदियों के पुरनियों ने निर्माण किया, और वे नबी हाग गए तथा इद्दो के पुत्र जकरिया की भविष्यद्वाणी के द्वारा उन्नति करते गए, और उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और पारस के राजा कुरूश, दार्यावेश और अर्तक्षत्र की आज्ञा के अनुसार उसे बनाया और पूरा किया। और ये भवन आदार महीना, 12वां महीना के 3रे दिन, जो राजा दार्यावेश के राज्य के 6ठे वर्ष में था, पूरा हुआ। Ezra 6:15। भविष्यद्वक्ता और राजा 5:5-5:13-15
तक की आयतें उन भविष्य सूचक घटनाओं का प्रतिनिधित्व करती है जो रविवार के कानून के समय सप्तपालकों के लिए अनुग्रह काल के समापन तक ले जाती हैं। वे दानियल अध्याय 12 की आयत 10 में बताए गए तीन चरणों में से तीसरे चरण का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। आयत 10 शुद्धिकरण है, आयतें 11 और 12 श्वेत बनाए जाना का प्रतिनिधित्व करती हैं, और आयतें 13 से 15 उस कसौटी का प्रतिनिधित्व करती हैं जहां सप्तपालक कुमारिया परखी जाती है। दानियेल की पुस्तक का आंतरिक संदेश अध्याय 7 से 9 तक के उलाई नदी के दर्शन से दर्शाया गया है और बाहरी संदेश अध्याय 10 से 12 तक के हिद्देकल नदी के दर्शन से दर्शाया गया है। अध्याय 12 आंतरिक और बाहरी दोनों दर्शनों का चरम बिंदु है और ये वो विधि प्रस्तुत करता है जिसके द्वारा मसीह 144,000 को उठाता और शुद्ध करता है। पद 10 से 16 1997 से लेकर पद 40 के छिपे हुए इतिहास का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पद 41 और 16 के रविवार के कानून तक पहुंचता है। जो पद इस छिपे हुए इतिहास में फिट होते हैं वे अध्याय 12 के पद 10 की पूर्ण पूर्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं।
बहुतों को शुद्ध किया जाएगा, उज्ज्वल बनाया जाएगा और परखा जाएगा, परंतु दुष्ट तो दुष्टता ही करेंगे और कोई दुष्ट समझ न सकेगा, परंतु बुद्धिमान समझेंगे। और उस समय से कि नित्य की बलि हटा दी जाएगी और उजाड़ने वाली घृणित वस्तु स्थापित की जाएगी, 1290 दिन होंगे। धन्य है वो जो प्रतीक्षा करे और 1335 दिनों तक पहुंचे। दानियेल 12:10-12।
वे बुद्धिमान जो 10वीं से 16वीं आयतों को समझते हैं और जिन्हें बौद्धिक तथा आध्यात्मिक दोनों रूप से मुहरबंद किया गया है, वही है जो आयत 40 के छिपे इतिहास में दर्शाए गए बाहरी भविष्य सूचक संदेश को समझते हैं, और वे रविवार के कानून से पहले उसी समझ में बौद्धिक रूप से स्थिर हो चुके हैं। बुद्धिमान वे हैं जिन्हें प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 और आयत 11 द्वारा प्रस्तुत आंतरिक संदेश ने रूपांतरित किया है, और वे रविवार के कानून से पहले उस अनुभव में स्थिर हो गए हैं। बुद्धिमान वे हैं जिन्होंने प्रतीक्षा से संबद्ध आशीष प्राप्त की है जो 144,000 को उन लोगों के रूप में चिह्नित करता है जो 10 कुमारियों की पूर्ण और अंतिम पूर्ति करते हैं। प्रकाशित वाक्य 11 पद 11 जुलाई 2023 में आ पहुंचा और इस प्रकार अंत का समय को चिह्नित करता है जब दानियेल और प्रकाशित वाक्य दो गवाहों के रूप में ये चिह्नित करते हैं कि जुलाई 2023 में खोली गई ज्ञान वृद्धि 144,000 पर किताब को मिलाए। ये दशपिंडी वीजुहा और 11 और 11 मिलकर 22 होते हैं जो दैवत्व और मानवता के संयोजन का प्रतीक है और जो तीन चरणीय शुद्धिकरण प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं जो 144,000 उत्पन्न करती है। वे दानियेल 12 पद 12 में पहचाने जाते हैं जो पाल मौनी के एक और हस्ताक्षर को प्रदान करता है, क्योंकि 12×12 144,000 होता है। हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।